सक्षम एक नज़र कीर्ति को देखता है और फिर प्रणाली को देखते हुए कहता है, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ बैठकर आप लोगों के साथ लंच किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रणाली जी के गले के नीचे से खाना नहीं उतरेगा। लेकिन प्रणाली ने सख्ती से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, पर मैं ये बात नहीं भूल सकती कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस के कुछ प्रोटोकॉल तो मुझे भी पता है। आइए बैठिए, साथ में लंच करते हैं। सक्षम अपने शरारती नेचर को मौजूद रखते हुए कहता है, सोच लीजिएगा प्रणाली जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए खाना कम पड़ जाए। इस पर कीर्ति चहकते हुए कहती है, नहीं सक्षम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजमहल से बहुत सारा खाना आता है, इतना कि पूरा स्टाफ खा ले, खाना कम नहीं पड़ेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सक्षम कीर्ति और प्रणाली के बीच में बैठ जाता है और कीर्ति पहले सक्षम को खाना सर्व करती है और फिर प्रणाली को खाना सर्व किया। लास्ट में कीर्ति ने अपनी प्लेट लगाई। अपनी प्लेट उठाने के बाद प्रणाली ने गुस्से में कीर्ति से कहा, कीर्ति तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे खाने की प्लेट में मीठा पहले मत डाला कर, मुझे मीठा खाने के बाद अच्छा लगता है। कीर्ति कहती है, सॉरी दीदी, मैं भूल गई कि आपको मीठा बाद में पसंद है। वो क्या है ना, मुझे मीठा खाने के साथ साथ ही खाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आपकी प्लेट में भी रख दिया है। मैं हटा देती हूँ। सक्षम जी, लाइए मैं आपकी प्लेट से भी मीठा पहले हटा देती। लेकिन सक्षम अपनी प्लेट पीछे करते हुए कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, दरअसल मुझे भी खाने के साथ साथ ही मीठा पसंद है। सक्षम और कीर्ति एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दोनों की पसंद एक जैसी थी और प्रणाली उन दोनों के बीच सर पीटते हुए कहती है, कहाँ इन नमूनों के बीच फंस गई मैं। वहीं पर आस्तिक जंगल वाले खंडहर ने अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसने प्रताप को बंद करके रखा था। पिछले एक हफ्ते से प्रताप को खाने के लिए सड़ा हुआ खाना ही दिया जा रहा था। हालांकि उसने इसे खाने से मना कर दिया था, लेकिन आस्तिक के आदमी प्रताप के मुंह में ज़बरदस्ती उस खाने को ठूस देते थे। प्रताप के पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, यहां तक कि सड़ा खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था और उसे लूज मोशन भी हो गए थे। उसे पीने के लिए सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितने की उसे जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती थी। इसके अलावा प्रताप को पानी की शक्ल तक नहीं दिखाई जाती थी। लूज मोशन होने की वजह से प्रताप का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था और उसने पॉटी वहीं पर बंधे हुए ही कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा गंदगी में इस समय मौजूद था। पॉटी से इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी जहां पर आस्तिक के आदमियों को खुद नाक पर कपड़ा बांध कराना पड़ता था, और हफ्ते भर पुरानी गंदगी में तो कीड़े भी होने लगे थे। प्रताप अपने लिए रहम की भीख मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए आस्तिक के आदमियों को देखते हुए कहा, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो, मैं रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। तभी अंधेरे में से आस्तिक की दमदार आवाज़ प्रताप को सुनाई देती है, तुम्हें पानी ज़रूर दिया जाएगा और दवा भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो भी पूछोगे मैं सब बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं पानी के लिए मर रहा हूँ। सीमा कौन है? अंधेरे से आई इस आवाज़ से प्रताप हैरान रह जाता है, लेकिन उसने कहा, मैं किसी सीमा को नहीं जानता हूँ। आस्तिक ने गुस्से में कहा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत को, इतने के बाद भी तुम टूटने को तैयार नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हें तोड़ना अच्छी तरह से आता है। चाहता तो पहले दिन से तुम्हारे मुंह से सच उगलवा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें एक मौका दिया, पर शायद तुम उस मौके के लायक ही नहीं हो। तुम्हें पानी चाहिए ना? क्या होगा अगर मैंने तुम्हें कभी पानी के बदले तेजाब पिला दिया तो? बाहर से इंसानों की चमड़ी गलते हुए तो इंसानों ने कई बार देखा होगा, लेकिन अंदर से इंसानों की हड्डियाँ गलती हुई कैसा लगता है, ये महसूस करना चाहोगे? आस्तिक के इस डरावने लहजे से प्रताप बुरी तरह से कांप गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बस पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। और मुझे ये भी बताओ कि तुम किस सीमा के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सी सीमा को जानता हूँ। सीमा इतना कोई खास नाम तो है नहीं कि मुझे याद रखना पड़ेगा, न जाने कितनी सीमा से मेरा सामना हुआ है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसके बारे में जानना है? आस्तिक ने गुस्से में कहा, वही सीमा जिसके बलात्कारी को तुमने सजा नहीं होने दी, वही सीमा जो तुम्हारे पास मदद की उम्मीद लेकर आई थी, वही सीमा जिसको तुमने एक रात के लिए अपने पास बुलाने का ऑफर दिया था, वही सीमा जिसका रेप केस तुमने 3 दिन के अंदर बंद करवा दिया था। मुझे सब कुछ जानना है कि तुम सीमा को कैसे जानते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुमने उस केस को 3 दिन में ही क्यों बंद करवा दिया था, कानून की मदद करने की जगह तुमने उन बलात्कारी की मदद की। मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें तेजाब के ड्रम में डुबो दूंगा। प्रताप बुरी तरह से कांप जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे कुछ मत मारना, मैं सब बताता हूँ। हाँ, मैं सीमा को जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ। दरअसल मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में देखा था उसे। सुंदर सी, मासूम सी, चंचल सी, अपने में रहने वाली और खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी सीमा, और उसका यही अंदाज मुझे पसंद आ गया था। मैं सीमा को पसंद करने लगा था, इसीलिए वैलेंटाइन डे पर मैंने सीमा को प्रपोज किया, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। उसने भरे कॉलेज के सामने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। वो तमाचा उसने मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरी इज्जत पर मारा था। पूरे कॉलेज के सामने मेरी बदनामी हो गई। सब मुझ पर हंसने लगे, लेकिन मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आया। मन किया कि उसका गला दबा दूं। तब मुझे पता चला कि वो मुझे इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, वो किसी और को पसंद करती थी। सीमा ने किसी और के लिए मुझे ठुकरा दिया, ये सोचकर ही मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैंने सोच लिया था सीमा से इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। एक दिन मैंने सीमा का पीछा किया जब वो कॉलेज से घर जा रही थी, और एक सुनसान रास्ते पर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि अगर मैं उसके साथ कुछ कर दूंगा तो फिर वो मेरी हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी उसे अपनी कैद में रखूंगा, लेकिन वो ज्यादा चालाक निकली। उसने मेरे पैरों के बीच में लात मारकर मुझे वहीं पर घायल कर दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दी।